दो दिन के अंतराल के पश्चात अपनी पुरानी क्लास अर्थात गोमट सार जीवकांड और संस्कृत व्याकरण का ज्ञान आप सब प्राप्त कर रहे हैं। तो अब मंगलाचरण के साथ प्रारंभ हो रहा है गोमट सार जीवकांड ग्रंथ का अध्ययन। सिद्धम शुद्धम पणमीय जिनिंद वर्णैमि चन्द्रमकलंकम् गुणरयण भूषणोदयम् जीवस्य परोवणम् गोच्छम्। संसारी जीव की अशुद्ध पर्याय को 20 प्ररूपणाओं के द्वारा बतलाने का संकल्प लिया आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने, और उन्होंने भगवान नेमिनाथ को नमन करके अपने नाम के को भी सार्थक करते हुए 20 प्ररूपणाओं का कथन करके इस ग्रंथ का नाम जीव कांड सार अर्थात जीव की विशेषताओं का वर्णन किया। तो 4 चैप्टर आप पढ़ चुके हैं, 5वें में संज्ञा प्रकरण है। कुल 20 प्ररूपणाओं में 5वां प्रकरण है संज्ञा प्रकरण। उसमें आपने आहार संज्ञा और भय संज्ञा का स्वरूप जान लिया है। कुल मिलाकर के संज्ञा नाम वांछा का है, ये बात आपने जाना है कि जिसके निमित्त से दोनों ही भावों में जीव दारुण दुखों की प्राप्ति करते हैं उस वांछा को संज्ञा कहते हैं। अर्थात ये जीव अपने हिताहित के विवेक के साथ में भी इन संज्ञाओं के आधार पर अपने मन को रोक नहीं पाता और आहार भय मैथुन और परिग्रह इन संज्ञाओं में पढ़ करके और दुखों को उठाता रहता है। आहार संज्ञा के बारे में आपने जान लिया, भय संज्ञा के बारे में भी जान लिया कि भयाक्रांत होकर के ये जीव न जाने कितने कर्मों का बंद करता रहता है। इसलिए हमें निर्भय होकर के पापों से भय खाना और पुण्य की ओर प्रवृत्ति करना, पुण्य की ओर बढ़ने में किसी के रोकने पर भी डरना नहीं, ये अभिप्राय ये सार समझना। अब तीसरी संज्ञा का नाम है मैथुन संज्ञा। आ जाइएगा पेज नंबर 47 और गाथा नंबर 42।
वेदसुदीरणाय
मेऊण सन्ना हवदी एवं सामूहिक रूप में गाथा पढ़िए। पणिदरस भोयणेणया तस्व जोगे कुशील सेवाए वेदसुदीरणाए मेऊण सन्ना हवदी एवं। मेऊण सन्ना माने मैथुन संज्ञा। प्रणीत रस भोजनेन च तस्योपयोगे कुशील सेवया वेदस्योदीरणया मैथुन संज्ञा भवति एवम्। यानी ये मैथुन संज्ञा जो है जीव के अंदर, सबके अंदर ऐसे बताई, प्रत्येक प्राणी के अंदर चारों ही संज्ञाएं होती हैं और मानव को मैथुन संज्ञा में प्रवृत्त कैसे किया जाता है या कैसे वह होता है इस बात को बताया। प्रणीत रस भोजनेन, प्रणीत रस भोजन माने कि कामोत्तेजक गरिष्ठ पदार्थों को यानी स्पाइसी भोजन करने से इंद्रियों में काम की वासना बढ़ती है, तो ये एक कारण हुआ। तस्व जोगे और उसका उपयोग करना, मैं इतने इतने रसीले भोजन किया करता था, उनका स्मरण करने से भी कामोत्तेजना बढ़ती है। कुशील सेवया, कुशील का सेवन करने से अर्थात आप ब्रह्म का सेवन करने से, और वेदस्योदीरणया वेद कर्म का यानी अंतरंग में वेद नाम वेद कर्म का उदय और उदीर्णा होने से यह मैथुन संज्ञा होती है। यानी कि मैथुन संज्ञा में चार कारण बताए हैं, उनमें से वेद कर्म के उदय और उदीर्णा अंतरंग कारण है, और बाकी जो तीन कारण बताए हैं कि स्पाइसी भोजन करने से और पिछले भुक्ति विषयों का स्मरण करने से, कुशील पुरुषों का या व्यभिचारिणी स्त्रियों का संग करने से इस प्रकार की भावनाएं उत्पन्न होती हैं, जिससे कि अपनी मैथुन संज्ञा कंट्रोल में, अनुशासन में नहीं रह पाती। तो मनोविज्ञान की भाषा में ये मैथुन संज्ञा प्रत्येक प्राणी में सेक्स के रूप में पाई जाती है, यानी सेक्सी डिजायर मैथुन संज्ञा है। तो संसारी मनुष्यों को समझो दो श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। एक श्रेणी उन मनुष्यों की जो मन के अनुशासन में चलते हैं, और एक श्रेणी उन मनुष्यों की जो मन को अपने अनुशासन में चलाते हैं। समझ गए ना? आशा दासी कृतो येन येन दासी कृतम जगत, यानी आशा लोभ उनके बस में हो जाता है, उनका दास बन जाता है, जो येन दासी कृतम जगत, जिन्होंने संसार को अपना दास बना लिया, अर्थात अपनी इंद्रियों पर अनुशासन कर लिया। इंद्रिय निरोधस तपः कहा गया है, इंद्रियों के विषयों पर अनुशासन करना तो वही तप का स्वरूप है। जैन शासन के अंदर, कर्म सिद्धांत के अंदर जहां आश्रय और बंध की बात कही है, वहीं संवर और निर्जरा की भी बात कही है कि तपसा निर्जरा च, तपस्या के द्वारा संवर और निर्जरा होती है। तो तपस्या मतलब केवल धूप में तपस्या करने लग जाना, बैठने लग जाना, या भोजन आदि का त्याग कर देना ही तपस्या नहीं है। इंद्रियों के ऊपर अनुशासन करना, इंद्रियों को अपने वश में करना, ये भी सबसे बड़ा तप होता है। मन को अनुशासित करना सबसे बड़ा तप है। इसलिए देखो, जहां भी लड़ाई झगड़ा होता है तो कहा जाता है अपने को नियंत्रित करो। अपन खुद को अनुशासित करेंगे तो हमें सामने वाला भी अनुशासित नजर आएगा। अगर हम अनुशासन में नहीं है तो हम दूसरे के ऊपर कभी किसी पर कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसके लिए एक चीज अध्ययन में आई कि मस्तिष्क विज्ञान की खोज अगर किसी ने किया तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त हुई। उसके अनुसार मस्तिष्क का जो रेटिकुलर फॉर्मेशन, अर्थात जो तांत्रिक जाल है, मस्तिष्क क्या है? आपके पूरे शरीर का गोदाम है। उस मस्तिष्क का जो रेटिकुलर फॉर्मेशन है वह न्यूरॉन्स से बनता है, जो न्यूरॉन से बनता है, और जहां पर भय, क्रोध, लोभ, मैथुन आदि भाव जन्म लेते हैं तो वह रेटिकुलर फॉर्मेशन उन भावों को उत्पन्न भी करता है और उस पर नियंत्रण भी करता है। यानी कि वहां पर भाव पैदा भी होते हैं और नियंत्रित भी होते हैं। यदि भाव उत्पन्न हो और साथ में नियंत्रण की क्षमता ना हो तो मनुष्य इतने आवेग में आ जाएगा कि उसका शारीरिक संतुलन बिगड़ जाएगा। नियंत्रण नहीं होने से पूरी शरीर की व्यवस्था लड़खड़ा जाएगी, यानी वो जो भी चाहेगा वो पागलों की तरह से करने लगेगा। तो ऐसे में इसी मस्तिष्क के अंदर अपनी भावनाओं को उत्तेजित करना भी हमारा ही काम है, भावनाओं को नियंत्रित करना भी हमारा अपना ही काम है। यानी यदि संसार के आधुनिक वातावरण को देख करके मन विकृत होता है तो उसे बार बार संबोधित करके मन को नियंत्रित करके अपने आप में लाना आत्मिक स्थिरता होती है। तो इस रेटिकुलर फॉर्मेशन की क्रिया को कर्मवाद की भाषा में औदयिक भाव और छायोपशमिक व्यक्तित्व कहा है ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। कर्मों का उदय आता है, उसके निमित्त से जो परिणाम होते हैं वे औदयिक हैं। उदय से होने वाले भाव औदयिक कहलाते हैं, क्षय और उपशम से होने वाले भाव क्षयोपशमिक कहलाते हैं। तो दोनों चीजें ये साथ साथ चलती हैं। समझो आज मनुष्य गति नाम कर्म का अपना उदय चल रहा है, तो औदयिक भाव भी साथ में है और क्षयोपशमिक भाव के द्वारा हम मिथ्यात्व से सम्यक्त्व की ओर बढ़ते हैं, पापों का निरोध करके पुण्य की ओर आते हैं। ये क्षयोपशमिक भाव को जानना चाहिए। औदयिक भावों से व्यक्ति के अंदर क्रोध, लोभ, भय, मैथुन आदि के परिणाम उत्पन्न होते हैं, क्योंकि औदयिक भाव का कार्य है उदय में आकर के भावों को उत्पन्न करना और क्षयोपशमिक भाव उन पर नियंत्रण करते हैं, ब्रेक लगाते हैं। तब चेतना में निर्मलता आती है और भाव उत्पन्न होना और नियंत्रित होना ये दोनों ही अवस्थाएं साथ साथ चलती हैं, क्योंकि आप संसार के अशुद्ध जीव की बात को पढ़ रहे हैं, जहां पर कर्म पूरी तरह से क्षय हो गए, जो भगवान बन गए उनकी आत्मा शुद्ध हो गई, पूर्ण निर्मल हो गई, तो वहां किसी प्रकार की कोई विकृति होती ही नहीं है। इसलिए जो विज्ञान को कर्म सिद्धांत को एक साथ मिलाने से आपको शरीर की पूरी प्रक्रिया पता चल सकती है और उसके साथ साथ आत्मा को शुद्ध करने की प्रक्रिया भी पता चलती है। इसलिए जैसे साधुओं को कहा गया कि आप राजाओं के घर का स्पाइसी भोजन ना करें, राजभोग ना खाएं। उसका कारण क्या है कि भावनाएं परिवर्तित होंगी और फिर जिस ब्रह्म स्वरूप आत्मा में लीन होने के लिए आपने ब्रह्मचर्य व्रत को धारण किया है उसमें कदाचित दोष आने की संभावना रहती है। एक राजा ने एक महात्मा जी से कहा, महात्मा जी मुझे आपसे बड़ा प्यार है, ठीक है आप मेरे घर में आइएगा, मैं आपको भोजन कराना चाहता हूँ। वे महात्मा थे, दिगंबर संत नहीं थे, लेकिन महात्मा के अंदर कहीं ना कहीं हर महात्मा में कुछ ना कुछ अच्छाई छिपी रहती है। उन्होंने कहा ठीक है मैं कल तुम्हारे घर आऊंगा। तो राजा ने सोने के बर्तन में खूब स्वादिष्ट खीर, मेवा मिष्ठान से सहित खीर बना के रखी और जैसे ही महात्मा जी आए बढ़ा और सोने की कलछी से ही उनके कटोरे के अंदर खीर डालने के लिए आया तो साधु बाबा ने कटोरा पीछे कर लिया, कटोरा पीछे कर लिया। राजा ने कहा आप मेरी खीर क्यों नहीं ले रहे। फिर राजा साधु ने कटोरे को आगे बढ़ाया, तब राजा ने अपने खीर के पात्र को पीछे कर लिया तो साधु बाबा पीछे वापिस चले गए। वापिस चले गए तो राजा ने सोचा कि महाराज नाराज हो गए हैं, पीछे पीछे भागा। महाराज सुनो तो सही, महात्मा जी सुनो तो सही, मैंने आपके कटोरे में खीर क्यों नहीं डाली थी। महात्मा जी रुके, राजा ने बताया कि मैंने इसलिए नहीं डाली, मैंने आपका कटोरा देखा तो उसमें धूल थी, कंकड़ थे, इसलिए मैंने सोचा कि सारी इतनी अच्छी खीर है तो खराब हो जाएगी महाराज। तब महात्मा जी रुके और बोले राजा, राजन देखो मेरी कटोरे में थोड़ी सी धूल और कंकड़ थे तो तुमने खीर नहीं डाली इसलिए कि खीर भी गंदी हो जाएगी। ऐसे आप बताओ, आपने आशीर्वाद देने के लिए मुझे अपने महल में बुलाया है, मैं आपको कैसे आशीर्वाद दूं। आपके मन का कटोरा पापों की धूल से, कसायों के कंकड़ से भरा हुआ है, मेरा आशीर्वाद जाएगा तो गंदी खीर के समान वह आशीर्वाद भी गंदा हो जाएगा। अर्थात राजा को तब समझ में आ गया कि किसी संत का आशीर्वाद लेने के लिए अपने मन को एकदम खाली कर लेना चाहिए, क्रोध लोभ मोह कषायों को उस समय बिल्कुल हटा देना चाहिए, तब संत का आशीर्वाद फलीभूत होता है। तो भव्यात्माओं, अनेक प्ररूपणाओं के माध्यम से आचार्य देव यही कहना चाहते हैं कि संसारी आत्मन, हे अशुद्धात्मन, तेरे अंदर अभी कसायों की, संज्ञाओं की और अनेक पापों की धूल भरी हुई है और स्वाध्याय करके इन चीजों को पढ़ करके अपने मन को शुद्ध करो तो मानुभाव मैथुन संज्ञा एक ऐसी संज्ञा है कि जब कामोत्तेजना आ जाती है तो व्यक्ति कुछ भी नहीं देखता और अपने मन को अपने शरीर को अपवित्र कर लेता है। इसलिए जो सारे व्रतों का मूल है ब्रह्मचर्य, उसका पालन करते हुए इस मैथुन संज्ञा से अगर विरक्त हो सके तो बहुत अच्छा है, वरना फिर गृहस्थ लोग अपनी पत्नी में या महिलाएं अपने पति में संतुष्ट हो करके और एक सीमित मैथुन का सेवन करते हुए और अपने गृहस्थ जीवन को सफल करें। इस बात के साथ में गोमट सार जीव कांड का स्वाध्याय संपन्न होता है।